सत्य और प्रकाश के सेवेंथ चैप्टर का आज सिक्स पार्ट है। पिछली बार हमने चर्चा की थी कि ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए कि नहीं, तो करनी चाहिए। इससे क्या लाभ होता है, क्या ईश्वर उससे प्रसन्न होकर कुछ विशेष करता है, नहीं करता, तो फिर क्यों करना चाहिए, तो उसकी चर्चा में हमने जाना कि जो पूजा के या भक्ति के जो तीन अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जो तीन अलग अलग स्टेजेस होते हैं, स्तुति मतलब ग्लोरिफिकेशन, उससे ईश्वर के प्रति प्रेम बढ़ता है और व्यक्ति अपने जीवन में अपने जीवन को चरित्र को बदलने में उसको आसानी होती है। ईश्वर का जो गुण कर्म स्वभाव है वो अपने आप अपने अंदर हम उसको ग्रहण करने में लग जाते हैं। इसी तरह जब हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं तो वो हमारे अंदर ह्यूमिलिटी क्रिएट करता है, हमारे एरोगेंसी को वो कम करता है। हमें ये बताने के लिए ये समझ हमारे अंदर पैदा होता है कि इस विशाल दुनिया में मैं कितना भी बड़ा हूं, मैं किसी भी देश का प्रेसिडेंट हूं कि पूरे दुनिया पर राज करूं, तो भी मैं इस विशाल दुनिया में बहुत छोटा सा हूं और मेरे पास जो सामर्थ्य है जो एबिलिटी है वो भी बहुत ही छोटी सी है। मैं बहुत बड़ा कुछ नहीं कर सकता, मैं कोई पहाड़ नहीं बना सकता, मैं कोई समुंदर नहीं सुखा सकता, तो मेरी एबिलिटी बहुत लिमिटेड है। ये जो अपने आप की एबिलिटी को समझना, और जब आपको समझ में आता है तो ये समझ में आता है कि हम कितने हेल्पलेस हैं दुनिया में, हमारी जो औकात है जो स्थिति है वो कितनी छोटी है, तब हमारे दिल से प्रार्थना निकलती है, ईश्वर के प्रति पुकार निकलता है कि आप हमारी सहायता करो। पर सहायता की प्रार्थना, जेन्युइन प्रार्थना तभी होती है जब अंदर ये भाव हो कि मैं निर्बल हूं। निर्बल किसी दूसरे के कंपैरिजन में, इस ओवरऑल दुनिया में, यूनिवर्स में, संसार में मैं कुछ भी नहीं हूं आपके सामने, तो वो जो स्वीकृति है, वो जो एक्सेप्टेंस ही है अपनी कमजोरी की, वो हमारे अंदर ह्यूमिलिटी पैदा करता है, हमारे अंदर वो अहंकार को तोड़ता है, व्यक्ति को विनम्र बनाता है, ज्यादा निर्मल बनाता है, और वो आपके लिए एक फील्ड क्रिएट करता है जहां ईश्वर को आप एहसास कर सकते हैं, ईश्वर को आप रियलाइज कर सकते हैं। वो तो कोई बाहर बाजार में नहीं मिलता है कि आकाश के अंदर या समुद्र के बीच में तो नहीं रहता है, वो भी मेरे और आपके अंदर रहता है। उसको जानने का एक ही तरीका है कि हम उसको रियलाइज करें। रियलाइज करने के लिए जरूरी है कि हमारा मन निर्मल हो। मन को निर्मल करने के लिए जरूरी है कि हम प्रार्थना करें, भक्ति करें, पूजा करें। पूजा की जो दूसरा अंग है, जो थर्ड लाइन है, उसे हम उपासना कहते हैं। उपासना का अर्थ ईश्वर के साथ अपने आप को एक करने की, जोड़ने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस, यूनाइट सेल्फ विथ गॉड, दैट इज कॉल्ड उपासना। और उपासना का मतलब होता है ईश्वर को अपने अंदर रियलाइज करना, अनुभव करना, और उसको जब आप अनुभव करते हैं तो आप उसके साथ जोड़ते हैं, इसी को उपासना कहते हैं। स्वामी जी लिखते हैं कि द थर्ड कंस्टिट्यूएंट ऑफ वर्शिप इज उपासना एंड द सब्जेक्ट द उपनिषद सेज, वो एक रेफरेंस देते हैं उपनिषद का, समाधि निर्धूतमलस्य चेतसो निवेशितस्यात्मनिय सुखम न शक्यते वर्णयितुं गिरा तदा स्वयं तदन्तःकरणे न गृह्यते। समाधि के द्वारा, उपासना की प्रक्रिया के द्वारा, योग साधना के द्वारा, जब वो मन बिल्कुल पाप रहित, क्लेश रहित, मैला रहित हो जाता है, बिल्कुल निर्मल हो जाता है, फ्लॉलेस हो जाता है, पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है, तब उसके अंदर जो सुख का, जो आनंद का एहसास होता है, जो आनंद का अनुभव होता है, वो दुनिया में कोई भी व्यक्ति उसको वाणी से उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकता कि वो खुशी कितनी ज्यादा है, कितना बड़ा आनंद है, उसको बताना मुश्किल है। सिर्फ आप उसको अनुभव कर सकते हो, आप उसको सिर्फ रियलाइज कर सकते हो, पर आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो। वो उतना बड़ा आनंद का अनुभव होता है, वो तब होता है जब मन निर्मल होता है। और निर्मल करने की जो तरीका है वो उपासना से मन निर्मल होता है। तो उपासना का जो जो सिंपल मीनिंग है, उप मतलब पास, नियर, आसना मतलब बैठना। इसका दूसरा जो सिनोनिमस है, जिसे आप उपवास बोलते हैं, उसका भी यही अर्थ है, पास बैठना। पास बैठने का अर्थ ये नहीं है कि ईश्वर कोई दूर है, भगवान कोई दूर है, तो आप हवाई जहाज में पहुंचे उसके पास, या बस के द्वारा, या गाड़ी लेकर, या पैदल चल के उसके पास पहुंचे और थोड़ी देर उसके पास बैठ गए। वो तो आपके भी अंदर है, तो उसको पाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पर प्रॉब्लम है कि वो हमारे सबसे नजदीक होने पर भी हमें सबसे सबसे मुश्किल से मिलता है। हमारे लिए वो सबसे मुश्किल काम है कि उसके पास बैठना। तो उसको जो एहसास करना कि वो मेरे अंदर है, उसको वो फील करना कि वो मेरे अंदर है, उसको रियलाइज करना कि वो मेरे अंदर है, उसी को उपासना कहते हैं। और उस उपासना के लिए जो कुछ आप काम करते हैं, जो कुछ भी आप प्रोसेस अपनाते हैं, उस प्रोसेस को उपासना या उपवास या पूजा या भक्ति कहते हैं। तो स्वामी जी लिखते हैं कि मैन शुड गो, अच्छा उस उपासना के लिए, उस ईश्वर को अंदर जो बैठा हुआ है उसको एहसास करने के लिए, इंसान वो आठ जो स्टेप्स हैं योग के, जिसको हम अष्टांग योग कहते हैं, जो पतंजलि के योग दर्शन में चर्चित है, उस अष्टांग योग को ऑर्डर वाइज व्यक्ति को करना चाहिए, और जिसके द्वारा वो उस ईश्वर को जो सर्वव्यापक है, हर जगह है, तो तुम्हारे अंदर भी है, उसको वो जो तुम्हारे अंदर है वो सर्वव्यापक है, उसको आप एहसास कर सकते हो, उस ओमनिप्रेजेंसी को उसके, और वो जो सर्वज्ञ है और तुम्हारे अंदर भी तुम्हें भी जानता है, उसकी उस ओमनिसियंसी को भी आप रियलाइज कर सकते हो, जब आप उस अष्टांग योग के जो आठ पार्ट्स वाले जो योग है उसको आप ऑर्डर वाइज, सीक्वेंस वाइज आप प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हो। उपासना उसी का नाम है। तो पतंजलि महर्षि अपने किताब में योग सूत्र, जिसका नाम है, जो हमारे छह वैदिक फिलोसफी है उसमें से एक है योग सूत्र या योग दर्शन, उसमें दूसरे चैप्टर में 30th सूत्र में वो लिखते हैं, जो उपासना के जो अलग अलग जो अष्टांग है, जो आठ अंगों वाला योग है, उसमें पहला अंग है यम, उसको यम कहते हैं, और आप ज्यादातर लोग जानते हैं। तत्रा हिंसा सत्यास्ते या ब्रह्मचर्या परिग्रह यमाहा। यमा का मतलब होता है रिस्ट्रेंशन, अपने अपने अंदर जो नेचुरल फ्लो है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करना, उसको रेगुलेट करने की कोशिश करना। गुस्सा उतना ही नेचुरल है जितना प्यार करना है, जितना दूसरों के ऊपर दूसरों को नुकसान पहुंचाने की इच्छा रखना उतने ही नेचुरल है जितना दूसरों के भला करने की इच्छा रखना। पर जो लोग उन नेचुरल अच्छा या बुरा फ्लो में से रेगुलेट करना जानते हैं, अच्छे इमोशन को ज्यादा बढ़ावा देते हैं और जो बुरे इमोशन से उसको कंट्रोल करते हैं, अब सही जगह पर यूज करते हैं। कोई भी चीज संसार में बुरा नहीं है, इवन आपके अंदर भी जितने बुराइयां है उन बुराइयों का भी एक खास ओकेजन पर, खास सिचुएशन पर अगर आप यूज करते हैं वो आपके लिए अच्छा होता है। संसार में जो भी कुछ बना है, कोई भी चीज बना है, कितना भी आपको बुरा लगे, वो जरूर किसी ना किसी रूप में फायदा देने के लिए ही होते हैं। उसका जब हम गलत सिचुएशन पर, गलत टाइमिंग पर, गलत प्लेस पर, गलत इंटेंशन के साथ, गलत क्वांटिटी के साथ, गलत क्वालिटी के साथ यूज करते हैं, तो वो हमारे लिए खराब करता है। जैसे तमोगुण, सत्व रजत तमोगुण तीन गुण है, तमोगुण नींद लाती है, आलस्य लाता है, तो इसीलिए उसको बुरा कहते हैं। पर तमोगुण बुरा नहीं है, तमोगुण नहीं होता तो आप जिंदा भी नहीं रह सकते, क्योंकि आप कभी सो भी नहीं पाते। आपको विश्राम करने के लिए, आपको सोने के लिए, आपको बैठने के लिए तमोगुण की जरूरत है। और अगर आप सोएंगे नहीं, प्रॉपर रेस्ट नहीं करेंगे, तो आप अगले दिन कुछ नहीं कर पाएंगे। वो जो आपको ताजा बनाता है, वो नींद आपको ताजा बनाता है, वो विश्राम जो रेस्ट आप करते हैं उससे आप रिफ्रेश होते हैं। और तमोगुण उस रिफ्रेशमेंट का कारण है। पर क्योंकि तमोगुण आपके अंदर रिफ्रेशमेंट लाता है, और आप इसीलिए 24 घंटे में से 18-18 घंटे सोने लगे, तो आप बर्बाद हो जाएंगे। तो इसीलिए नहीं कि तमोगुण खराब है, और तमोगुण खराब है सोच के आप नींद छोड़ दिया आपने, तो भी आपका जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। तो गुस्सा हो, प्यार हो, ईर्ष्या हो, ये सारे जब हम उसको बुरा इस्तेमाल करते हैं तो बुरा होते हैं। ईर्ष्या के अगर बीज नहीं रहेगा तो शायद आप में से बहुत सारे लोग को इतने ऊंचे नहीं आते। वो जो दूसरों को देख करके अपने अंदर जो दर्द होता है, दूसरों की उन्नति देख के, बहुत सारे लोग उसके कारण बहुत आगे बढ़ जाते हैं। पर ईर्ष्या जब आपके अंदर को जलाने लगे, दूसरों को नुकसान करने के लिए आपको उकसाने लगे, और आप खुद उस ईर्ष्या के कारण रात रात की नींद खराब करने लगे, तो वो इसका मतलब आप उसकी गलत इस्तेमाल आपके अंदर हो रहा है। उसको रेगुलेट करने की जरूरत होती है नॉर्मल लाइफ में। पर जिसको ईश्वर को समझने की इच्छा है, उसको तो पूरी तरह खत्म करने की इच्छा होती है, उसे हम यम कहते हैं। और वो पांच होते हैं, तत्र अहिंसा, अहिंसा मतलब हिंसा न करना, सत्य अस्ते या चोरी ना करना, ब्रह्मचर्य अपने इंद्रियों को नियंत्रित रखना, अपरिग्रह घर सामानों के इकट्ठा करने से अपने आप को रोकना, ये पांच तरह के चीजों को यम कहते हैं। इनकी चर्चा पहले भी हम बहुत बार कर चुके हैं, तो स्वामी जी इसको एक सिंप्लीफाइड वे से इसको सामने रखने की कोशिश करते हैं कि हर व्यक्ति को यम का जो पांच वस्तु है उसको अपने ढंग से वो बड़े सिंपल वे से बताने की कोशिश करते हैं। वी आर नो इल विल अगेंस्ट एनी वन एंड ऑलवेज लव एवरी वन। वो अहिंसा की परिभाषा करते हैं, किसी के प्रति द्वेष नहीं रखना और सबसे प्यार करो। हिंसा एक बाहरी चीजें हैं, एक हिंसा एक एक्टिविटी जो हमारे बाहर होता है, वो हिंसा बुरा या अच्छा नहीं होता है। जब आपके अंदर किसी को नुकसान करने की इच्छा होती है, तो वो उसके उस इमोशन के साथ जो भी आप एक्टिविटीज करते हैं वो हिंसा होती है। आप किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए कभी कभी अच्छा खाना भी खिलाते हैं, हो सकता है सामने वाले को पता ना हो, पर आपका इंटेंशन है किसी को आप चोट पहुंचाने के लिए कि आप खिला खिला करके अपना बनाते हैं, फिर बाद में आप उसको मारते हैं। आप किसी को बुरा बनाने के लिए आप उसकी इतनी तारीफें करते हैं, इतनी तारीफें करते हैं कि वो बिगड़ ही जाता है। तो अच्छी जरूरी नहीं है कि हिंसा का मतलब आप किसी को जो दिखाई देता हो कि आप किसी को मार रहे हो या पीट रहे हो या काट रहे हो, जो इंटेंशन है वो मैटर करता है। कि आपके अंदर अगर वो इल विल है, किसी को नुकसान पहुंचाने की इच्छा है, उसके कारण आप कुछ भी एक्टिविटीज करते हैं, अच्छा करते हैं या बुरा करते हैं, वो हिंसा है। हिंसा वो नहीं कि जो सामने दिखता है, हिंसा वो पब्लिक के लिए हिंसा है, वो सोसाइटी के लिए हिंसा है। कोर्ट में जब आप जाते हैं, वो डिसीजन होता है कि आपने क्या पब्लिक में किया, पर आपके लिए जो आपके अंदर आप खुद जानते हैं और ईश्वर आपके अंदर बैठा हुआ अंतर्यामी जानता है, कि सचमुच आप अपने अंदर किस तरह की काम कर रहे हैं, आप सचमुच किसी से प्यार दिखा रहे हैं या आपके अंदर जो नुकसान पहुंचाने की भावना है आप उसके प्यार के द्वारा उसको काम करने के प्यार के द्वारा उसका फायदा उठा रहे हैं। तो दूसरों के एक नुकसान पहुंचाने की इच्छा ये हिंसा है, आप उसको किस रास्ते से बाहर निकालते हैं वो अलग बात है। और इसका जब आपके अंदर वो भाव का कम हो जाए व खत्म हो जाए, दूसरे को नुकसान पहुंचाने की इच्छा खत्म हो जाए, तो जो दूसरा जो उसका पॉजिटिव लाइन है कि दूसरे के प्रति प्रेम करें, जो व्यक्ति सबसे प्रेम करने लगे और किसी को नुकसान पहुंचाने की इच्छा न करे वो अहिंसक होता है। और वो अहिंसा पहली सीढ़ी है, पहला स्टेप है ईश्वर को प्राप्ति करने की, रियलाइज करने की। और अगर मेरी इंटेंशन में, मेरी जो इच्छा के अंदर मेरा जो भाव है वो अच्छा या बुरा भाव में काम करता हूं, अगर वो लालच से जुड़ा हुआ है, अगर वो लोभ के कारण है, अगर वो मोह डिल्यूशन के कारण है, अगर वो क्रोध है एंगर के कारण है, काम या कुछ पाने की इच्छा के कारण है, उसके कारण हमारे से हिंसाएं होती हैं। इनडायरेक्टली और डायरेक्टली, नोइंगली और अननोइंगली हमारे से जो भी बुरे काम होते हैं, या तो हमारे लालच के कारण, या तो हमारे गुस्से के कारण, या तो हमारे डिल्यूशन के कारण, मोह के कारण, या हमारी जरूरत से ज्यादा पाने की इच्छा के कारण होती है। तो जब हम इनको कंट्रोल करते हैं, हिंसा ना करने की अभ्यास करते हैं, तो वो उससे पहले हमें पहचानना पड़ेगा अपने लालच, जो मैं कुछ कर रहा हूं मैं क्यों कर रहा हूं, अगर मैं कुछ खा रहा हूं क्यों खा रहा हूं, क्या लालच से खा रहा हूं, स्वाद के लिए खा रहा हूं या जीने के लिए खा रहा हूं। अगर आपका इंटेंशन है कि आपकी मजबूरी है कि आपको जीने के लिए खाना पड़ रहा है, आपको सर्वाइव के लिए खाना पड़ रहा है, तो आप कुछ भी खाएं तो कोई गड़बड़ी नहीं है। पर अगर आप टेस्ट के लिए खा रहे हैं, आप अगर स्वाद के लिए खा रहे हैं, आप कुछ भी खाएं, तो वो हिंसा को जरूर प्रमोट करता है, वो हिंसा को जरूर प्रमोट करता है। असली बात यह नहीं कि आप खा क्या रहे हैं, असली बात यह नहीं कि आप कैसे देख रहे हैं, असली बात यह नहीं है कि आप कैसे बिहेव कर रहे हैं, असली बात है कि उसके पीछे आपका इंटेंशन क्या है। क्या वो लालच से है, या कुछ स्वाद के चक्कर है, इंद्रियों को तृप्त करने के चक्कर है, या गुस्से से कहे, उससे हिंसा डिफाइन होता है। और जो इन हिंसा को कंट्रोल करता है, सबके प्रति प्रेम भाव रखता है और किसी को भी नुकसान पहुंचाने की इच्छा नहीं रखता, वो अहिंसा के मार्ग पर चलता है। और वो पहली स्टेप है, पहला स्टेप है ईश्वर को पाने की। और भक्ति का पहला स्टेप यहीं से शुरू होता है, अहिंसा से शुरू होता है। दूसरा स्टेप है अहिंसा सत्य। सत्य का अर्थ स्पीक द ट्रूथ नेवर अन अनट्रूथ। इससे पहले भी हमने इस पर काफी चर्चाएं की हैं कि जब हम सत्य बोलने की और असत्य ना बोलने की बात करते हैं, उसमें भी हमारे अंदर बहुत सारे मिसपरसेप्शंस हैं सच और झूठ के प्रति। जरूरी नहीं है कि जब मैं सच बोलूं, और ज्यादातर तो हमारा सच भी बड़ा कड़वा निकलता है, वो सच भी उसकी परीक्षा भी होती है, उसकी जो टेस्टिंग होती है वो भी अहिंसा के द्वारा होती है। वो आपका इंटेंशन क्या है उस सच बोलने के पीछे। सच बोल देने से कोई कोई यम के मार्ग पर, योग के मार्ग पर चल पड़ेगा, ऐसा नहीं है। अगर उस सत्य बोलने के पीछे आपका इंटेंशन किसी को हर्ट करना है, किसी को इल, आपके अंदर वो इल फीलिंग है, इल विल है, किसी को नुकसान पहुंचाना है, तो वो सत्य भी उतना ही खतरनाक है, उतना ही पाप से भरा हुआ है जितना किसी को मारना। तो इसीलिए महर्षि व्यास उसको डिफाइन करते हैं कि आपकी सारी एथिक्स में वो एथिक एथिक कभी नहीं रहेगा अगर उसका इंटेंशन बैड हो, खराब हो। तो आप कैसे समझेंगे कि मैं जो कर रहा हूं ये अच्छा है कि बुरा है? तो कहते हैं उसकी जो कसौटी है, उसको परखने की जो तरीका है वो है कि हिंसा और अहिंसा। मैं अच्छे से अच्छा काम क्या मैं इसीलिए नहीं तो कर रहा हूं कि किसी को नुकसान पहुंचाना है? अच्छे से अच्छा काम अगर नुकसान पहुंचाने के लिए है तो वो हिंसा में जाएगा। इसका मतलब आप अच्छे एथिक्स को भी मिसयूज करते हो, पब्लिक के लिए आप कुछ भी हो, आप एक्चुअली आप गिल्ट, आप क्राइम करते हो, आप अपराध करते हो। जब हम सच बोलते हैं और मेरा सच बोलने के पीछे ये इंटेंशन है कि मैं किसी को चोट पहुंचाऊं, ज्यादातर जब आपके झगड़े करते हैं तो दुनिया भर के सच्चाई बाहर निकालते हैं। जब तक दोस्त थे तब तक थे सारे पाप माफ, सारी बुराइयां ठीक, पर जिस दिन आपकी झगड़ा हुआ किसी कारण से तो आप सारे 14 पुश्तों से शुरू करके सारे खानदानी सारे निकालते हैं, ये तू हो, तेरा फैमिली ये है, तूने वो किया था। और जो सामने वाला चिढ़ने लगे, गुस्सा करने लगे, फिर हम बड़े गर्व के साथ बोलते हैं, सच बोला, सच बोलते ही चुभता है, सच तो हमेशा कड़वा होता है, तो मैं क्या करूं। सच कभी कड़वा नहीं होता है सज्जनों देवियों, कभी नहीं होता है। सच के पीछे जो इंटेंशन होता है वो सच को कड़वा बनाता है। आप बुरी से बुरी बात को, बिल्कुल कड़वी से कड़वी सच को भी आप बोले तो भी वो मिठास भरा हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप क्यों कह रहे हो। आप अगर इसीलिए सच बोल रहे हो कि सामने वाले को चुभे, सामने वाले को दर्द हो, सामने वाले तड़पे, तो वो आपका सच सच नहीं है, वो पाप से भी बड़ा होता है। इसीलिए महर्षि मनु मनुस्मृति में लिखते हैं, सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् मा ब्रूयात् सत्यम अप्रियम, प्रियम च नानृतम ब्रूयात् एष धर्म सनातन। कहते ये सनातन धर्म है, दिस इज द इटर्नल रूल। क्या सत्य बोलना चाहिए, सत्यम ब्रूयात्, पर प्रिय सत्य होना चाहिए, वो सच मीठा होना चाहिए, वो सच अच्छा लगने वाला होना चाहिए। फिर आप सोचेंगे कि नहीं, फिर इसका मतलब अगर कोई सच थोड़ा चुभने वाला हो, ऐसा सच ना बोले, उसकी जगह झूठ बोले, बोलते नहीं, झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए, और मीठा झूठ तो सवाल ही नहीं उठता बोलने का। तो मीठा सच क्या चीज होता है, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होता है कि मीठा सच क्या होता है, सच तो कड़वा होता है। सच कभी कड़वा नहीं होता है, हम किस इंटेंशन के साथ बोलते हैं। एक टीचर है, एक प्रोफेसर है, आप उसको यह भी बोल सकते हो, जैसे भारत में जब गुस्से में आते हैं तो बोलते हैं वो मास्टर इधर आ जा। अब वो यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हो या स्कूल का टीचर हो या कुछ भी हो, आप आपके जो बोलने के लिहाज से पता लगता है कि आप उसको नीचा दिखाने के लिए बोलते हो, वो चिढ़ता है। आपके तो आप मास्टर तो हो, टीचर तो हो, क्यों तिलमिलाते हो। बात टीचर पर नहीं है, आपके बोलने के अंदाज, आप सच बोलने की कोशिश नहीं करते, आप उसको झुकाने की कोशिश करते थे। तो आप बड़े से बड़े आदमी को भी आपकी सच्चाई की जो भाषा आप प्रयोग करते हैं या सच्चाई बोलने के पीछे जो आप इंटेंशन रखते हैं कर सकते हैं। तो जब हमारा सच दूसरों को नीचा दिखाने के लिए होता है वो फिर हिंसा के कैटेगरी में आता है। जब हमारा सच सिर्फ सच बोलने तक होता है, हमारा इंटेंशन किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं अभी तो सच बोलना है, तो वो सच फिर प्योर होता है। इसीलिए सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् नेवर। और जरूरी नहीं है कि आप झूठ बोले और झूठ बोल के उसको मीठा झूठ बोले। अगला है नेवर कमिट थेफ्ट, अस्तेयम, अस्तेय मतलब चोरी ना करना, एंड बी ऑनेस्ट इन योर डीलिंग्स। चोरी का अर्थ भी सिंपली ये नहीं है कि कोई आपके घर में घुस करके आपके पैसा ले जाता है, आपके सोना ले जाता है, आपकी टीवी कंप्यूटर उठा लेता है, आपके कंप्यूटर उठा लेता है, या आपकी गाड़ी चुरा लेता है, तो सिर्फ वही चोर है, वो भी आपकी स्टेट ऑफ माइंड है। आप क्या नहीं उठाते क्या उठाते ये मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि आपके अंदर स्टेट ऑफ माइंड क्या है। क्या आपके अंदर ये भाव अगर है कि जितना काम करने से आपको पैसा मिलना चाहिए उतना पैसा लेकर उससे आप कम काम करने की कोशिश करते तो वो चोरी है। जितना पैसा आपको मिलना चाहिए जितने काम पर उससे आप ज्यादा पैसा लेने की कोशिश करते तो वो चोरी है। तो किसी भी तरह की कमाई जिसमें करने की इच्छा, जिसके लिए जितना परिश्रम होना चाहिए उतना आप नहीं करते, उसके बावजूद भी आप उसको कमा पाना चाहते हैं, वो चोरी के कैटेगरी में आता है। इसीलिए आजकल पॉलिटिक्स में, इकोनॉमी में इसीलिए दो तरह के चोर कहा जाता है, एक व्हाइट कलर्ड होते हैं, अब तो दो तरह के क्राइम भी होते हैं ना, एक व्हाइट कलर्ड होते हैं एक ब्लैक कलर्ड। जो नॉर्मली छोटे मोटे लोग चोरी वारी करते हैं वो तो सब आ जाता है डिक्लेयर। ये जो व्हाइट कलर्ड क्राइम होता है वो ज्यादा खतरनाक होता है। व्हाइट कलर्ड का मतलब वो आपके घर से टीवी नहीं उठाते, कंप्यूटर नहीं उठाते, आपके घर से दो चार हजार पांच हजार डॉलर नहीं उठाते, पर आप जैसे करोड़ों करोड़ों लोगों का अरबों अरबों डॉलर लूट लेते हैं। उनको समाज में रिस्पेक्ट मिलता है, सम्मान मिलता है, उनको पॉलिटिकल लीडर्स उनको उनको रिस्पेक्ट करते हैं, उनको पब्लिक सपोर्ट करती है, क्योंकि वो चैरिटी भी बढ़िया करते हैं, वो मंदिरों में भी जाते हैं, वो हर कम्युनिटी प्रोग्राम में वो दान दक्षिणा भी करते हैं, पब्लिक में उनका रेपुटेशन अच्छा होता है। हो सकता है पब्लिक में उनका रेपुटेशन अच्छा हो, पब्लिक उनको बड़े बड़े अवार्ड देता हो, पर ईश्वर की साम्राज्य में, ईश्वर की व्यवस्था में, और वो खुद के अंदर वो चोर है, और वो जिंदगी में कभी भी उस परम सुख को नहीं प्राप्त कर सकता। तो इसीलिए अपने अंदर ये भाव क्रिएट करना कि मेरा जितना सामर्थ्य है, जितनी मेरी एबिलिटी है, और जितना मैं काम करता हूं कर सकता हूं, और मेरे काम की जितनी कीमत है उससे ज्यादा लेने की कोशिश ना करना या भाव ना रखना, ये चोरी ना करने का भाव है। ये तीसरा स्टेप है ईश्वर की भक्ति की ओर चलने के लिए। सज्जनों देवियों ध्यान दीजिएगा, ये बड़ी मुश्किल होता है। आपको सुनने को कहीं नहीं मिलेगा कि ये सब छोड़ो तभी ईश्वर भक्ति मिलेगा। आपको तो यही कहेंगे जो करना है करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस हमारे शरण में आ जाओ, हम आपको मुक्ति दिला देंगे। इसीलिए धार्मिक और अधार्मिक के जीवन में अंतर कम दिखता है। कम क्या, बिल्कुल नहीं दिखता। सुख में फर्क कम दिखता है, वो इसीलिए नहीं दिखता क्योंकि अंदर हम बदलने के लिए कभी कोशिश नहीं करते। पर हमारे सारे ऋषि मुनि आचार्य शास्त्र इसी बात पर जोर देते रहे, अंदर में परिवर्तन लाओ, बाहर को बदलने की जरूरत नहीं, वो अपने आप बदलेगा। जो अंदर होता है वही बाहर रिफ्लेक्ट करता है। तो चोरी ना करना दूसरे स्टेप है उपासना का, ईश्वर भक्ति की ओर, जिसको यम का तीसरा अंग है। चौथा अंग है इंद्रिय निग्रह, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, कंट्रोल योर सेंसेस, नेवर बी लास्ट फुल। अपनी काम वासना को, अपनी लस्ट को कंट्रोल करो। दुनिया में मैंने शुरू में कहा जो कुछ भी नेचुरल है वो बुरे नहीं होते, उनको सही इस्तेमाल, सही तरह के प्रयोग करें, जीवन में बड़े सारे लाभ और होते हैं। पर जब हम उनका मिसयूज करते हैं, जब हम उनका बिल्कुल लिबरल यूज करने लग जाते हैं, तब वो हमारे लिए नुकसान करते हैं। जब हम अपने इंद्रियों को खुला छूट देते हैं, कुछ भी भोगें, कभी भी भोगें, और फिर हम मर्यादाएं तोड़ने लगते हैं, हम लिमिट्स को तोड़ने लगते हैं, हम फिर कोई बांध नहीं रखते हैं। वो सामाजिक सिस्टम बनाए गए थे इसीलिए, जो सामाजिक व्यवस्था है वो अमेरिका में हो या अफ्रीका में हो या भारत में हो, वेस्ट हो या ईस्ट हो, वो अलग बात है कि वेस्ट में बहुत जल्दी जो सोशल सिस्टम से वो टूटने लग गए, और भारत में देर से टूटने लगे हैं और टूटते जा रहे हैं हर जगह। बात किसी कल्चर की नहीं है, कोई भी कल्चर अलाउ नहीं करता है कि आप सोशल सिस्टम को तोड़ो। वो तो व्यक्ति खुद के लालच के कारण, खुद के शरीर को ज्यादा से ज्यादा भोग देने के लिए वो जानबूझ के कंप्रोमाइज करता है, सोशल सिस्टम को तोड़ता है, और उसको सपोर्ट करने के लिए हमेशा कुछ इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, बिके हुए पैसाखोर इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, जो हमेशा उसको इंटरप्रेट करते हैं अलग अलग तरीके से, अलग अलग जमाने में उसको अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, जिनका आप लिबरल कहते हैं, जिनको आप बड़ा बड़ा उदार सोच वाला कहते हैं। ये सबसे खतरनाक प्राणी दुनिया में यही लोग होते हैं। वो हर बुराई को अच्छे की नजर में एक्सेप्ट करने को तैयार होते हैं। वो डिस्क्रिमिनेशन को बड़ा नापसंद करते हैं। आप उनको कहो कि देखो ये बुरा ये अच्छा है, वो फिर कंजर्वेटिव होता है। अगर आप अच्छा बुरा चुनने के लिए बात करो तो वो कंजर्वेटिव होता है, जबकि तो सब ठीक है, जो जो करता है क्या फर्क पड़ता है, तो लिबरल हो जाता है। पर आप लिबरल हो ना हो, आप सोसाइटी में आपको एक्सेप्टेंस मिले ना मिले, आप खुद जानते हैं, अगर आप अपने इंद्रियों को लिमिटलेस भोगने के लिए छोड़ देते हैं, आप सोसाइटी की नॉर्म्स को तोड़ देते, ये जो सोसाइटी की जो सिस्टम है, नॉर्म्स है, वो सोसाइटी के लिए नहीं है, वो खुद को कंट्रोल रखने के लिए। मेरा मन करता है कि मैं कुछ करूं जो मुझे नुकसान करता है, पर मैं नहीं करता हूं क्योंकि सोसाइटी अलाउ नहीं करता। इसीलिए मुझे बुरा लग सकता है कि ये बड़ा कंजर्वेटिव सिस्टम्स हैं, ये सिस्टम बड़ा, सोसाइटी बड़ा बेकार है, मुझे हिप्पी होना चाहिए, मुझे वो दुनिया से बिल्कुल अलग हो जाना चाहिए। मैं ऐसा सोच सकता हूं, पर एक्चुअली ये मुझे ही फायदा करता है, मेरे लाइफ को कंट्रोल करता है, मेरे इंद्रियों को नियंत्रित करता है। जो जितना इंद्रियों को बेलगाम छोड़ता है, वो कभी अंदर की यात्रा नहीं कर सकता, उसको कभी वो जो जेन्युइन सुख जिसको कहते हैं नहीं मिलेगा। और वो उसको जब सुख की जरूरत पड़ेगी, जब वो फ्रस्ट्रेशन में डिप्रेशन में होगा, वो फिर ड्रग लेने लगता है, वो फिर पार्टी में नाचने लगता है, वो फिर वो कान कान फोड़ गाना सुन के एंजॉय करता है, फिर वो जब बंद हो जाता है फिर वो टेंशन में आता है। उसको एक लिमिटलेस प्रोसेस में जाना पड़ता है, वो सुख मिलेगा दो मिनट के लिए, फिर वो उसको वो फिर जब वो असर कम हो जाएगा दोबारा लेगा। जैसे आप पेन किलर लेते रहते हैं जब तक वो और वो दोबारा लेते रहते हैं, ठीक होता है हर छह घंटे में आप लेते रहते हैं। इसीलिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप खुद को इतना कंट्रोल करो कि आपको परेशानी में भी डिप्रेशन में भी आप अपने आप को बनाए रख सको। ब्रह्मचर्य उसी का काम है कि इंद्रियों को नियंत्रित रखने का। पांचवा स्टेप है अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह। अपरिग्रह का अर्थ होता है कि अपने आप बहुत सारे धन संपत्ति इकट्ठा करने की कोशिश न करें, जितनी जरूरत है। अगर आप उस रास्ते में जाना चाहते हैं, जितना ज्यादा आप कलेक्ट करेंगे, जितना ज्यादा आप होल्डिंग करेंगे, उतना आपको उसको डिस्पर्स करने में, उसको यूज करने में मुश्किल होगी। आप खुद कभी कभी देखते होंगे, अगर आपके क्लोजेट में सैकड़ों कपड़े ड्रेस रखा हुआ हो, आपको कभी अचानक कहीं जाना पड़े कोई अच्छा कपड़ा ढूंढने के लिए, आपको कोई भी अच्छा कपड़ा नहीं मिलेगा, जबकि सारे महंगे खरीद रखे हैं आपने। एक भी घंटों लग जाएगा आपको चुनने के लिए, फिर आप दूसरों से पूछोगे बताओ इनमें कौन सा अच्छा है, नहीं ये तो बेकार है, ये तो बेकार है, खरीदा तो आपने ही था और बड़े महंगे महंगे पैसे देकर खरीदा था। कोई सस्ते में एक भी कपड़े आपने नहीं खराब के क्लोजेट में नहीं है, पर क्योंकि इतना ज्यादा है कि आप खुद चुनने के लिए भी टाइम लगाते, ये जो होल्डिंग है वो आपका टाइम भी कंज्यूम करता है, आपके इंटेलेक्ट भी कंज्यूम करता है, और आपको इतना ज्यादा अटैच करता है, लाइफ में आपका बहुत बड़ा हिस्सा उसको लाने, उसको संभालने, उसके प्रति केयर करने में चला जाता है। पर उपासना का पहले स्टेप का पांचवा विषय है कि कम से कम चीजें, जितना हमारे जीवन में जरूरत है उससे ज्यादा हम इकट्ठा ना करें। जितना कम इकट्ठा करेंगे उतना अंदर ज्यादा खाली होगा, उतनी निर्मलता ज्यादा बढ़ेगी। ये पांच चीजें यम के नाम पर प्रसिद्ध है। दिस फाइव टुगेदर कंप्राइज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द उपासना आर कॉल्ड यमाज। नेक्स्ट टाइम हम चर्चा करेंगे पांच नियमों के बारे में, जो उपासना का अष्टांग योगों के जो सेकेंड पार्ट है, जिसको आप नियम कहते हैं, शौच संतोष तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानी। एक मिनट, थोड़ा और दो तीन मिनट है। उपासना के दूसरे पार्ट का पहला चीज है शौच संतोष, जिसको नियम कहते हैं, महर्षि पतंजलि योग दर्शन में जिसको नियम कहते हैं, योग सूत्र के सेकेंड चैप्टर में 32 सूत्र है ये। शौच संतोष तपः स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि नियमः, ये भी पांच होते हैं। जो यम है इंद्रियों को नियंत्रित करना, ज्यादातर यम की जो कैटेगरी है वो दूसरों के साथ डील करते समय जो हमारा इमोशन रहता है उसको रेगुलेट करने का, जो पांच अलग अलग कैटेगरी पता है। नियम जो खुद के साथ जब हम बिहेव करते हैं वहां हम कैसे रेगुलेशन रखें उसी को नियम कहते हैं। शौच सफाई रखना, क्लीनिनेस, संतोष कंटेनमेंट,
खुश रहना, शांत तृप्त रहना, जो मिला उसे खुश रहने की आदत डालना, तप अच्छा बुरा सुख दुख सहने की आदत डालना, स्वाध्याय पढ़ना लिखना, ये बड़ी जरूरी चीज है। जिस सब्जेक्ट में आपको आगे बढ़ना है, जिस रास्ते पर जानना है, उसको ठीक से समझना, ये स्वाध्याय है, सेल्फ स्टडी। और ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर के प्रति भक्तिभाव रखना, ये पांच है जो आप जिसके जिसको मैं अपने साथ डील करता हूं। इसके साथ सोसाइटी का कोई लेन देन नहीं है, समाज के साथ जो मेरा व्यवहार है उसको रेगुलेट करने का नाम यम है, खुद के साथ जो व्यवहार है उसको रेगुलेट करने का नाम नियम है। ये पांच तरह के होते हैं। तो स्वामी जी इसको बड़े सिंपल भाषा में इसको बताने की कोशिश करते हैं। शौच मतलब क्लीनिनेस का मतलब बी क्लीन इंटरनली बाय शनिंग इन्फैचुएशन एंड एवर्शन। दो तरह की सफाई है, अंदर की सफाई बाहर की सफाई। बाहर की सफाई भी उतनी जरूरी है, आप कपड़े साफ पहने, शरीर साफ रहो, जिस घर में रहते हैं वो साफ रहो, जिस रास्ते में जाते हैं वो साफ रहो। साफ नहीं रहेंगे तो बीमारियां होंगी, खाली बीमारियां नहीं होंगी, फिजिकली बीमारियां नहीं, मेंटली भी बीमारी होती है। आप कभी दो तीन दिन तक बिना नहाए रहिए, एक कपड़े को दो तीन दिन तक पहने रहिए, मत उतारिए, फिर देखेंगे आपके काम में असर पड़ेगा, आपकी स्टेट ऑफ माइंड में असर पड़ेगा। सिर्फ फिजिकली आपको बुरा नहीं लगेगा, अब मेंटली भी आप बहुत बोझिला बोझिला भारी भारी सा लगेगा। तीन दिन के बाद जब आप नहाने जाते हैं, कपड़े चेंज करके ऐसा साफ सुथरा कपड़े पहन लेते हैं, आप खुद फील करेंगे कितना हल्के हो जाते हैं, कितने फ्रेश लगता है। जो काम नहीं बनता था वो आसान लगता है, जो समझ में नहीं आता था वो समझ में आने लगता है। बाहरी की सफाई से भी आपके अंदर में परिवर्तन आता है, आपका दिमाग शार्प होने लगता है, आपके काम ज्यादा आसान होने लगता है बाहर की सफाई से। और ये भक्ति का एक पाठ है। और सिर्फ बाहर की सफाई से भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि हम दुनिया में देखते हैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं, खास करके जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो ये हैं, जो बाहर बड़े चकाचौंध रहते हैं, साफ सुथरे जो रहते हैं, अंदर कितने करप्ट होते हैं, मेंटली कितना वो गड़बड़ वाला खराब मन से भरे हुए होते हैं, हर तरह के बुराई मन में रख करके चलते रहते हैं। तो इसलिए स्वामी जी ने कहा कि मन की भी सफाई, इंटरनल क्लीनिनेस भी उतना ही जरूरी है जितना एक्सटर्नल क्लीनिनेस चाहिए। इंटरनल क्लीनिनेस मन में जो राग है, जो अटैचमेंट है, जो इन्फैचुएशन है, या जो द्वेष है, जो एवर्शन है, दूसरे को नफरत करना, दूसरे को नुकसान पहुंचाने की भावना, या दूसरों के साथ दूसरों को पाने की चाहत, दूसरों से अलग रहना, किसी चीज को पाने की या छोड़ने की जो चाहत है, उससे उससे जितना हम कम अटैच्ड कम होंगे, जितना दूर रहेंगे, उतना हमारे मन पवित्र होगा, मन निर्मल होगा। और बाहर की सफाई, हम जहां रहते हैं जिस एरिया में वो अगर हम बाहर का दुनिया साफ रहता है, तो वो भी एक स्टेप है ईश्वर की भक्ति को और आगे बढ़ने के लिए। बाकी चीजें हम अगली बार जिस चर्चा करेंगे। आपने ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति, नमस्ते।